और संयोगियों के द्वारा आयोजित इस आध्यात्मिक श्रीमद् भागवत की कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण विशेष रूप से कलयुग में सूर्य के समान प्रकट होके अज्ञान और अंधकार को दूर करने के लिए प्रकट हुआ है। सूर्य अर्थ शब्द अर्क उदय, अर्थ का मतलब सूर्य। जैसे एक सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देता है, किसी देश का सूर्य अलग नहीं होता है, किसी जाति का सूर्य अलग नहीं होता है, एक ही सूर्य सबको प्रकाश देता है। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उस सूर्य को अपना शिष्य बताते हैं कि वो सूर्य मेरा प्रथम शिष्य है, उसका नाम विवस्वान है और वो सबको प्रकाश देता है। और यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भागवत रूपी सूर्य के रूप में उदय हुए हैं। जैसे एक सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देता है, ऐसे ये भागवत पूरे विश्व का कल्याण करेगा, पूरे विश्व को शांति का संदेश देगा और पूरे विश्व के सुख के लिए इसका कलयुग के अंदर अवतार हुआ है। तो विशेष रूप से इसका पठन पाठन श्रवण वर्णन कलयुग के लोगों का कल्याण करेगा, हितकारी है, दुख निवारण करने वाला है और जीवन सुखमय बनाने वाला है। इसलिए भागवत में लिखा है नित्यम भागवत सेवया, इस भागवत का सेवन नित्य करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक है। अपने विश्व भर के 500 से अधिक केंद्रों में प्रतिदिन सुबह एक श्लोक के ऊपर एक घंटा भागवत की चर्चा होती है। ये नित्य विश्व के जितने भी केंद्र हैं वहां भागवत का सुबह श्रवण करने हैं। ये आध्यात्मिक नाश्ता है। बाहर काम से जाने से पहले अपने आप को भागवत के श्रवण से परिपुष्ट कर लो तो सुरक्षा का कवच पहन के जाओ, पूरा दिन सारा काम करो, आपको दुख परेशानी नहीं मिलेगी क्योंकि आप भगवान का श्रवण करके कवच पहन के बाहर निकले। तो नित्य भागवत का श्रवण करने का नियम बनाना जीवन को सुखी करने का साधन है। पहले दिन हमने बताया था इस विश्व के तीनों ईश्वर ब्रह्मा विष्णु और महेश भागवत का पाठ करते हैं, सुनते हैं। और महाराज परीक्षित इस विश्व का एक छत्र राजा भागवत सुन रहा है, महाराज युधिष्ठिर कथा सुन रहे हैं, हजारों लोग संत आते हैं उनके राज्य में और कथा चलती है। जिस उनके पास समय है, जो राज चलाते हैं उनके पास भी समय है। भगवान श्री रामचंद्र के राज में हजारों ऋषि आते थे और सत्संग होता था। तो ये मानवता की महानता है कि उसको सत्संग सुलभ मिल जाए तो जन्म सफल हो जाए। तो कल तक हमने 3 स्कंद का श्रवण किया है। पहले स्कंद में 19 अध्यायों में सुनने का अधिकारी और सुनाने वाला सर्वश्रेष्ठ सुखदेव, उन दोनों का दर्शन किया। दूसरे अध्याय में सुनने से भगवान की प्राप्ति होती है। हम इस दुनिया में हमारे जितने विचार बने हैं, बोलना भी सीखा है तो सुनने से सीखा है। دیکھنے سے اتنا نہیں سیکھا جتنا سننے سے سیکھا ہے. جو کچھ بھی ہمارے اندر جانکاری ہے مکھیہ روپ سے وہ سب سننے سے آئی ہے. تو شرون مکھیہ انگ ہے جیون میں بھگوان کو پراپت کرنے کا. تو شرون اتم سادھن ہے بھگوت پراپتی کا, لیکن شرون میں منن ہونا چاہیے, جو سنے اس کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد جیون میں اس کو ابھیاس میں لانا چاہیے, تب شرون پورا ہوتا ہے. اور اس شرون برہما جی نے بھگوان کے ساکشات بھاگوت کا شرون کیا ہے, اور برہما جی نے بھی بھاگوت نارد جی کو سنائی اور نارد جی نے ویاس کے دوارا اس کا وستار کیا. تیسرے اسکند میں بھاگوت کے سرگ کا ورنن ہے, مطلب بھگوان وشنو کے دوارا سرشتی. سرشتی دو پرکار کی ہوتی ہے, ایک مول سرشتی بھگوان وشنو پر ہے جس میں جیو تو بھگوان کے انش ہے, برہما جی جیو نہیں بنا سکتے. جیووں کے کرم کا پھل بھی بھگوان دیتے ہیں, کوئی اور نہیں دے سکتا. جیو جیو کے کرم کے پھل, اور جن چیزوں سے شریر بنتا ہے وہ سارا مسالہ بھگوان دیتا ہے, اس کو بولتے ہیں سر. یہ سب سامان برہما جی کو دیتے ہیں. برہما جی جو سرشتی کرتے ہیں اس کا نام ہے وترگ. وترگ کا مطلب ہے وشیش سرشتی جس میں جیو کے کرموں کے انوسار اس کو الگ الگ آکرتیاں پرکرتیاں سنسکرتیاں شکلیں دی جائیں, تو وہ وترگ کہلاتا ہے. ایسے آدھونک بھاشا میں سمجھ لیجیے کہ برہما جی بھی ایک جیو کو اپنے بڑے کمپیوٹر میں ڈالتا ہے, اس کے کرم کو ڈالتا ہے, تو اندر دیکھتا ہے کہ بڑا دیوتا پشت تھا, بڑا سیوا دھاری تھا, بڑا ادھار تھا, دان کرتا تھا. تو برہما جی در کو دباتا ہے اور مسالہ ڈالتا ہے, دیوتا بن کے باہر نکلاتا ہے, تو دیوتا اس کا بن گیا. ایک اور جیو کو اندر ڈالتا ہے, اس کا کرم بھگوان نے دیا ہے, وہ اس کے اندر ڈالتا ہے, سہنشائی میں ڈالا ہوا اس کا کرم کا چیتنا. آج کل اتنے میں سب کرم آ جاتے ہیں. تو اندر لکھا ہے کہ لوگوں کو بڑا ستایا ہے, چوری بدماشی جی, تو پھر دب دباتا ہے اور جیون بن کے باہر نکلتا ہے. بڑا بھلا مانس ہے تو اچھا انسان نکلتا ہے, اور بہت ساری عمر مزدوری کی کام کیا اور کبھی بھگوان کا نام نہیں لیا, تو پھر گڑھ دباتا ہے, گڑھا بن کے باہر نکلتا ہے. تو برہما جی کو کچھ نہیں کرنا ہے, مسالہ سارا ملتا ہے جس سے شریر بنتے ہیں, جیو سارے ملتے ہیں جو امر ہیں, وہ تو بھگوان کے ادھر سے ہی باہر نکلتے ہیں, اور سب کے کرم کا چٹھا بھی ملتا ہے, تو اس کو وترگ بولتے ہیں. تو کل ہم نے سرگ میں دو پرکار کی سرشتی دیکھی, دیوتاؤں کی سرشتی برہما جی کے دوارا سوئم منو شتروپا, پھر اس کی بیٹی دیوبوتی کی نو کنیائیں انسویا آدی جن سے وشنو کے دوارا ہمارا ونش چلا ہے, اور پھر کپل دیو بھگوان کا اوتار, اور دوسری طرف اسوری پرکرتی کی سرشتی میں ہم نے ہرناکش اور ہرناکشیپوں کا درشن کیا. تو ہرنے کہتے ہیں سونے کو, یہ دونوں لوبھ کی پردھانتا تھی. دنیا بھگوت گیتا میں ایک شلوک ہے, کام کروھ لوبھ نرک دوارم. کام کروھ اور لوبھ تینوں نرک کے دروازے ہیں. ہرناکش اور ہرناکشیپو لوبھ کے پرتیک ہیں, ان کی نظر کیول دھن کے اوپر ہے, سنگرہ کے اوپر ہے. راون کام کا پرتیک ہے, وہ تو بھوگ کے لیے بھگوان کی بھاریا کو بھی بھگا کے لے گیا, تو وہ کام کا پرتیک ہے. اور تیسرا ان کا اوتار شیشوپال اور کا ہوا, وہ کروھ کا پرتیک ہے, وہ تو بہت بڑا کروھی نکلا. تو یہ تین اسر بھگوان کے بھکت ہیں, وہ خود سے آئے ہیں بھگوان کی لیلا میں بھاگ لینے کے لیے, اور ہم کو کیول لیلا کر کے ڈراما کر کے دکھانے کے لیے کہ لوگ کام کروھ
सर्वनाश कर देता है। ये कामी क्रोधी लोग ही नहीं है, ये भगवान के भक्त हैं। ये थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। होता क्या है कि हम कहते हैं रावण खराब है, अरे हमारे अंदर रावण बैठा है, उसको निकालना है, इसलिए वो निकाल आए। वो रावण तो भगवान के धाम से आया, वापस उठा, उसको तो भगवान लेने के लिए आ गए, हमको कभी भगवान लेने आएंगे क्या? तो ये तो जैसे यहाँ राम नाम का ड्रामा करो तो कोई रावण बन जाए, तो हमारा एक बच्चा ही रावण बनता है, तो वो रावण थोड़ी है, वो तो हमारा बच्चा है, रावण का ड्रामा कर रहा है। तो ऐसे समझना चाहिए कि ये सृष्टि कैसे असुरी होती है, उससे कैसे बचना चाहिए, और कैसे देवी होती है, माता पिता की आज्ञा पालन करना, सब धर्म का पालन करना तो देवी सृष्टि होती है। तो उसके तो देवी सृष्टि की तरफ जाना चाहिए, अभी इसे बचना चाहिए, ये इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आज कल चौथे अध्याय अरिष्ठन में प्रवेश किया था, वो विसर्ग है, विशेष सृष्टि है, उसमें मनु के स्वयं मनु के पहले पुत्र के वंश का वर्णन शुरू करने से पहले कल हमने सिर्फ केवल अनुसूया और अत्रि, अनुसूया उसको कहते हैं जो किसी में दोष नहीं देखे, किसी में दोष नहीं देखे उसको अनुसूया कहते हैं, और अत्रि उसको कहते हैं जो तीनों गुरु के प्रभाव से अपने आप को परे रखे या बचा कर रखे। अगर हमारे जीवन में अनुसूया आ जाए और गुरु के प्रभाव से हम अपने आप को बचा लें तो भगवान अपने आप मिल जाते हैं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अत्रि और अनुसूया के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता स्वयं चल के गए थे, और माँ सीता ने अनुसूया से नारी धर्म की शिक्षा ग्रहण की। तो किसी में दोष नहीं देखना, हर एक के अंदर दोष भी होते हैं, गुण भी होते हैं, भला आदमी गुण ग्राही होता है, हर एक के अंदर गुण मिल जाता है, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसमें गुण नहीं हो, और कोई ऐसा आदमी नहीं जिसमें दोष नहीं हो। मधुमक्खी की तरह गुण ग्राही बनो, नीम से भी मधु निकालो, करेले के बेल से भी मधु निकालो, ये होगा अनुसूया का विचार। और कचरे के ऊपर बैठने वाली मक्खी बन जाएंगे तो केवल हर एक जगह पे बुराई ही दिखाई देगी। तो ये शिक्षा पहली है कि जीवन में गुण ग्राही होना चाहिए, दूसरे में दोष नहीं देखना चाहिए। दूसरे में दोष देखने का अधिकार सबको नहीं है, बेटे बाप को बेटे में दोष देखे तो सुधारने का अधिकार है, गुरु को शिष्य में दोष देखे तो सुधारने का अधिकार है, लेकिन संसार सबके लिए आपने टीका नहीं दिया कि आपका काम नहीं सुधारना है तो दोष देखो, लेकिन किसी का बिगाड़ना है तो दोष मत देखो, फिर अच्छा ही होगी। तो ये इन दोनों के पास भगवान प्रकट हुए, और तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश ने इनका पुत्र बनने का वचन दिया, और तीनों इनके पुत्र बने हैं, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा, ये अत्रि और अनुसूया का संतान है। तो ऐसे जो ऐसे हमारे जीवन में गुण ग्राही बन जाए, अच्छे लोगों में अच्छाई देखना सीखे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि अर्जुन तुम अनुसूया हो इसलिए मैं आपको गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने दोष दृष्टि नहीं है इसलिए तुम गीता के सुनने के अधिकारी हो। अगर हमारे जीवन में ये अच्छा एक गुण आ जाए तो भगवान बड़े धर्मात्मा संतान देता है, बड़े उधार दयालु प्रवृत्ति के बच्चे घर में पैदा होते हैं। जब भगवान ही आ जाता है तो ऐसे शुद्ध आत्माएं धरती के ऊपर आ जाते हैं, और ये गुण नहीं है तो फिर दुरात्मा का संसार में आना। इसके बाद कथा चलती है, चौथे स्कंद में 31 अध्यायों में 4 विभाग हैं। पहले विभाग में धर्म, दूसरे में अर्थ, तीसरे में काम और चौथे में मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, और चारों भगवान की कृपा से पूरे हुए। धर्म का रूप यज्ञ है, भगवान विष्णु को यज्ञपति कहते हैं,
तो कथा यहाँ शुरू होती है कि मनु जी की बेटियों में एक का विवाह हुआ, कल कदम के साथ देवभूति का। आठ की दूसरी बेटी का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, और तीसरी प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। आकृति को रुचि प्रजापति से यज्ञ और दक्षिणा पुत्र और पुत्री हुए। वो यज्ञ भगवान का अवतार, एक अवतार है यज्ञ अवतार, 24 अवतार है। तो दूसरी पुत्री जिस पुत्री देवहूति और स्वयं मनु की भी एक भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है, यज्ञ और दक्षिणा उनकी पुत्री। प्रजापति दक्ष का प्रसूति के साथ विवाह हुआ, उसको बहुत कन्याएं हुई, लेकिन सबसे छोटी कन्या का नाम सती, और उसका विवाह शंकर जी से हुआ, और उसको कोई संतान नहीं हुई। तब प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने, सती को क्यों संतान नहीं हुई? तो यहाँ ये प्रश्न शुरू होता है 7 अध्यायों में। यज्ञ धर्म का साधन है, लेकिन धर्म का कार्य करे, यज्ञ करे, और भगवान का या भगवान के महान भक्तों का अपमान करे तो फल नहीं मिलता। तो कथा आती है कि पहला दक्ष ने यज्ञ किया प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर। उस यज्ञ में सारे देवता आए, ब्रह्मा जी स्वयं आए, शंकर भी आए, दक्ष के यज्ञ के अंदर सब देवता लोग आए, ऋषि लोग आए। पहले यज्ञ के अंदर देवता आया करते थे, कलयुग में उन्होंने आना बंद कर दिया है। पहले यज्ञ में देवता आया करते थे, हम रामायण में पढ़ते हैं कि यज्ञ के अंदर से देवता निकला, कलश लिया, और दशरथ महाराज ने कलश लिया। तो ये देवताओं का अपने वाहन है, वो आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन अब उन्हें बुलाने वालों में आह्वान करने की शक्ति है, और न ही उनको देखने के लिए हमारी वृत्ति है। तो सब देवता बैठे थे, दक्ष प्रजा के अंदर प्रवेश किया, और प्रजापति उसको ब्रह्मा जी ने बनाया था, वो प्रेमी था सबका, तो सब उठ के खड़े हो गए, उसका सम्मान किया। बड़े आदमी के आने के ऊपर पूछना मर्यादा है, ब्रह्मा जी नहीं उठे क्योंकि वो तो पिता थे, तो बेटे के आने के ऊपर पिता का उठना जरूरी नहीं है। सुखदेव आए तो सब ऋषि उठे, लेकिन व्यासदेव नहीं उठे, वो तो उनके पिता थे, उनका उठना मर्यादा में नहीं आता। लेकिन शंकर जी नहीं उठे, वो तो समाधि में बैठे थे। दक्ष प्रजापति ने कहा, ब्रह्मा जी नहीं उठे कुछ बात नहीं, ये शंकर जी तो मेरा जमाई है, मेरे बेटे के समान है, ये क्यों नहीं उठा? अपमान इसने किया है मेरा, कोई इसको यज्ञ में भाग नहीं देगा। बहुत संसार के अंदर रहता है, स्नान भी कभी नहीं करता। क्या भगवान विष्णु ने मुझे कहा मेरी लड़की है किसको दे दी? शंकर भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन शंकर के गुरु ने कहा कि दे दे करता है बकरी की तरह, शंकर को नहीं जानता है, सब इसकी पूजा करते हैं। दक्ष के लोगों ने भी उनको शराब देना शुरू किया, दक्ष बायका करके चला गया, यज्ञ जी से मिलकर सबका अपमान करके दक्ष चला गया, और शंकर जी यहां से चुपचाप उठ के चले। शंकर जी वापस कैलाश चले गए। शंकर ने ये बात सती को नहीं बताई अपनी पत्नी, ये शंकर जी सबसे बड़ी शिक्षा ग्रस्तों के लिए है। ससुराल वालों से झगड़ा हो जाए, ससुर या काले थे, तो घर में कभी पत्नी को शिकायत नहीं करनी, क्योंकि पत्नी भले घर आपने में रहती है, उसका प्रेम जो है वो माता और परिवार से बहुत ज्यादा होता है। तो शंकर ने कहा पत्नी को तो बताया नहीं, चार में अपने भजन में लग गए, उनको मान अपमान से ऊपर है, वो तो परम वैष्णव है, आदि देव में आते हैं, महादेव हैं। दक्ष प्रजापति ने फिर दूसरा यज्ञ कनखल में, हरिद्वार में कनखल में गंगा जी के तट के ऊपर किया, और उस यज्ञ में सबको बुलाया, शंकर जी को निमंत्रण ही नहीं दिया, सिर्फ इसलिए यज्ञ कर रहे थे शंकर को अभी यज्ञ नहीं बुलाऊंगा। तो आकाश मार्ग से देवता लोग जा रहे थे अपनी पत्नियों के साथ, ऋषि लोग जा रहे थे अपनी पत्नियों के साथ, पार्वती ने सभी ने देखा कि ये हम लोग कहाँ जाते हैं छठ छठ करके, ये स्त्री का स्वभाव है। कहीं भी कोई शादी वगैरह जाते हो, कोई खड़े खड़े लोग जाए तो उसको देखने में उसको बड़ा अच्छा लगता है, कौन है, कहाँ जा रहे हैं, क्या पहना है, ये उसके स्वभाव में आता है, ये उसका नेचर है। तो सभी ने कहाँ जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं? बोला महाराज दस के यज्ञ में निमंत्रण है। महाराज दस मेरा पिता, हमारे पिता के घर जा रहे, हमको मालूम नहीं। शंकर जी कहते हैं हे कैलाश पति, हमारे पिता के घर में बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलिए चलिए। शंकर जी कहते हैं निमंत्रण तो आया नहीं। सच कहते अपने पिता के घर में निमंत्रण की क्या जरूरत है, मंदिर में निमंत्रण की क्या जरूरत है, गुरु के पास निमंत्रण की क्या जरूरत है, वहां तो जा रहे, जाने में कोई दोष नहीं। आप ठीक कह रहे हैं सती, अगर कोई भूल जाए तो चला जाना चाहिए, अगर कोई जान बूझ के नहीं बुलाए और वहां जाए तो अपमान होता है और अपमान मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी होता है। बाण से भी वाणी का घाव नहीं कभी मिटता है, बाण का घाव मिट जाता है, वाणी का घाव जो है वो नहीं मिटता है। तो बाण से वाणी ज्यादा विषैली होती है, सर्प से सर्पणी ज्यादा विषैली होती है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। अब यहां दूसरा एक बड़ा अद्भुत ग्रस्त का दर्शन होता है। अगर स्त्री माता पिता के घर जाने के लिए तैयार हो जाए और आप उसको रोकोगे तो संभव होगी। सच को तो क्रोध ऐसा आया, लाल आंखों से शंकर को देखने लगी जैसे भस्म कर दिए, अब तो जाना ही नहीं। शंकर ध्यान से मन करके समाधि में चुप गए, सोचने लगे कि ये तो जाएगी जरूर और इसको तो अब लगता है मरना है। अगर यहां मरेगी तो माता पिता की याद में मरेगी, वहां जाकर मरेगी तो मेरी याद में मरेगी, तो मेरी याद में मरेगी तो वापस मेरे पास आएगी। और मरना ही है तो जाए अपने माँ बाप के घर, मरे मेरे घर के साई के लिए मुझे बने। शंकर जी ने तो चुप छा ली और सब यहां से तैयार हो जाने के लिए, अपनी वीणा उठाई, सुंदर कपड़े शादी में जाने की तैयारी की। शंकर जी के गण साथ में ले लिए, वो तो चले साथ में, नंदी भी साथ चला। और यज्ञ शाला में जैसे पहुंचा है तो कोई उसका स्वागत नहीं किया, केवल माँ ने कहा बेटी आओ, बहनों ने कहा बहन आओ, लेकिन पिता ने पूछा नहीं, पंडितों ने स्वागत नहीं किया। सती एकदम यज्ञ को देखा, यज्ञ के अंदर शंकर जी का भाग नहीं देखा, स्थान नहीं देखा, समझ गए। और वहां लिखा है कि ईश्वर को भगवान ने ऐसी दृष्टि दी है कि सामने वाले भाग के भाव को एकदम पढ़ सकती है। ये भगवान ने उसको बहुत बड़ी बुद्धि दी है कि सामने वाले का भाव क्या है, और एकदम जैसे शंकर जी का अपमान जिस सभा में हो उस सभा में मैं नहीं रह सकती, और दक्ष यहाँ से वापस मैं जाऊं और मुझे कहा जाएगा कि दक्ष की पुत्री हूं, मैं ये कभी भी रखना नहीं चाहती। और उसी उधर ही बैठ के सती ने योग अभ्यास से अपने शरीर को त्याग दिया और उस सती का शरीर के टुकड़े 52 जगहों से गिरे, वहां देवी के 52 पीठ बने। अब सती ने जो शरीर छोड़ दिया तो जो सती के साथ शंकर जी के गण थे वो तो यज्ञ के अंदर उपद्रव करने लगे। तो उस वक्त ब्रह्म ऋषि ने यज्ञ में आहुति डाली, अंदर से ऋषि देवता निकले और उन्होंने शंकर के गण को फैला दिया, वहां से शंकर के गण वहां से भाग। नारद घूमता हुआ सीधा कैलाश में आके कहता है प्रणाम, बोले नाथ आइए नारद ऋषि सुनाइए क्या समाचार है। बोला नहीं सुना, दक्ष के यज्ञ में सती कहाँ है? बोला वो तो दक्ष यज्ञ में गई। बोला गई नहीं है, गई तमापद हो गई। शंकर ऐसे बाल सत्य निगान के नीचे धक्का, उससे वीरभद्र नाम का एक गुप्त गण का पैदा हुआ। और वीरभद्र कहता क्या आ गया, बोला दक्ष के यज्ञ में जाऊंगा, जिन्होंने अपराध किया है उनको दंडित करो। अब वीरभद्र सारे दोबारा सब गणों को लेकर, शंकर जी ने कहा सती को तो सीते मेरे गणों का भी अपमान किया है, गणों को अभी निरादर किया है, भक्तों के निरादर को मैं सह नहीं सकता।
और वीरभद्र यहां से चला है, वहां भृगुरश सुबह सुबह भृगु यज्ञ की तैयारी कर रहा है। फिर आंधी तूफान कहां से आ गए, अंधेरा क्यों हो रहा है? तो सती की मां कहती है प्रसूति कि सती की हत्या, शंकर जी का अपमान और विरोध, ये आंधी वहां से आ रही है। और इतनी देर में वीरभद्र आया और आते ही पहले दक्ष को ऐसे पकड़ा और उठा के उसको गर्दन काटने लगा। जिस पशु की बलि देने की यज्ञ में वो लकड़ी लेके दक्ष का सर काटा और उठा के सर को ऐसे ही दक्षिण अग्नि में चढ़ा दिया। और उसके बाद भृगु ऋषि जो ऐसे हंस रहा था, उसकी दाढ़ी को खींच के बाहर निकाला, पूछ की आंख निकाली, भक्त का दांत तोड़ दिया, किसी देवता का हाथ, किसी का पांव तोड़ा, अब तो सारा यज्ञ ऐसे हो गया, सारे हाथ पांव बंधे हुए। सीधे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ये देखो हमारी हालत ऐसी हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा निमंत्रण जहाँ से आए सब जगह जाना जरूरी नहीं है, निमंत्रण मेरे पास भी आया, मैं तो नहीं गया ना, जहाँ झगड़े की संभावना है वहां नहीं जाना चाहिए, आप गए क्यों? और आपको ये मालूम नहीं है कि शंकर जी का अपमान कर रहे हैं तो वहां क्यों गए? आपको जान मालूम नहीं है कि शंकर का अगर भाग नहीं है यज्ञ में तो यज्ञ गए थे, वो परम वैष्णव है, उसका अपमान अगर किया जाए तो वहां जाने में तो उपद्रव होगा, ये आपकी गलती है, इतना मालूम नहीं था आपको? और आप क्या करें? और आप चलो शंकर जी के पास क्षमा याचना कर मांगनी पड़ेगी। सारे देवताओं को लेकर शंकर जी के पास ब्रह्मा आए, बोला कहीं क्रोध में तो नहीं है? बोले बाबा जी कहीं शाम है, ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं, चार कुमार सामने बैठे हैं और ज्ञान गोष्ठी हो रही है, आत्मचिंतन हो रहा है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, शंकर जी ने कहा आइए पिता भक्त, आप सदस्य स्वागत है। ब्रह्मा जी ने कहे कि देवताओं के ऊपर कृपा कीजिए, ये अपनी गलती को मानते हैं और दक्ष के यज्ञ में आप करके उसको संपन्न कीजिए। शंकर जी ने कहा जो आपकी इच्छा। ये दूसरी शिक्षा शंकर जी से मिलती है, कितना भी कोई गलती करे लेकिन अच्छा आदमी बनाने के लिए आ जाए, अपनी गलती को मान ले तो जिद नहीं करना चाहिए, टाइम खराब नहीं करना चाहिए। शंकर जी ने बिल्कुल टाइम खराब नहीं कर, ये नहीं कहा कि हमको ऐसे कहा चलो चलो चलते। शंकर जी की गलती के ऊपर कभी ध्यान देना। पार्वती का वाहन क्या है? शेर। और शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। दोनों पार्टी कैसे करेंगे घर में? शेर खाएगा कि नहीं खाएगा? बैल। हम आप पहला बेटा घर में आएगा, गणपति जी वाहन क्या है? चूहा। और शंकर जी के गले में क्या है? सांप। अब सांप चूहे को खाएगा कि नहीं खाएगा? अब ये दोनों परेशान है। अब दूसरा बेटा आएगा स्कंद मुर्गा, किसके ऊपर चढ़ के आएगा? मयूर के ऊपर। अब सांप कहाँ जाएगा? सांप तो मयूर खाएगा, सांप चूहे को खाएगा, शेर बैल को खाएगा। इतने सारे झगड़े के बीच में भी शंकर समाधि में बैठे। ये बहुत बड़ी शिक्षा है गृहस्थियों को कि गृहस्थ में ऐसे बहुत से झगड़े छोटे मोटे सदा होते रहेंगे। अगर शंकर जी से भगवान का ध्यान करना सीख लो, जो ही काम करते हैं शंकर जी आप देखेंगे तो या तो हरि कथा करेंगे या भगवान के ध्यान में बैठेंगे। तीसरा काम शंकर जी के पास है ही नहीं, कोई भी पुराण खोलो शंकर पार्वती वो बता रहे हैं ऐसे लिखा मिलेगा। या भोलेनाथ तो ग्रस्त में रहने वाला अगर भगवान का ध्यान करे, हरि कथा सुने तो ठीक, नहीं तो छोटे छोटे झगड़े बहुत होते हैं और उसको संभालना मुश्किल। शंकर जी वहां उतर आए तो गडक पाए दक्ष का घर, ये घर पड़ा है थोड़ा घर तो है नहीं, उसको दक्षिण अग्नि में चला जाता, डर नहीं है तो मैं क्या करूं? तो यज्ञ में किसको हवन करना था? बोला बकरे को डालना था। बोला बकरे को? बोला सारे ट्रांसप्लांट करना, मैंने एक्सपेरिमेंट मेरे बेटे के ऊपर पहले किया, इतना बड़ा हाथी का सर लगा दिया तो ये बकरे का लगाना कौन सा मुश्किल है? ये तो ट्रांसप्लांटेशन सर्च शंकर जी का एक्सपेरिमेंट पहले से पक्का था। ऐसे बकरे का सर निकाला, दक्ष के सर के ऊपर रखा, दक्ष जी ने प्रणाम करके शंकर जी को कहा मुझे क्षमा करना, मैंने से अपराध हो अब। और जैसे क्षमा याचना की दक्ष ने,
भृगु को बकरे की बची हुई दाढ़ी लगा दी भृगु को। बाकी को बोला कि आंख वाले को सूरज की रोशनी में देख लेगा, दांत नहीं है तो आटा खा लेगा चने का। ऐसे करके बाकी देवता सब ठीक हो गए। उस वक्त भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी तो शंकर जी के साथ आए ही थे, तो भगवान विष्णु कब प्रकट हुए? जब दक्ष ने क्षमा याचना की। तो इसलिए कहते हैं कंखल ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मा विष्णु मय एक समय से प्रकट हुए। तीनों वहां एक समय गए। भगवान विष्णु ने आए और कहा कि अब तो यज्ञ समापन हुआ, अब तो सर यज्ञ पूरा हो गया। यज्ञ जिसके लिए किया जाता है वो यज्ञ पति विष्णु आ गए। अब तो दक्ष के यज्ञ को पूर्ण किया गया है और ये सात अध्यायों में शिक्षा ये मिलती है शंकर जी से। बहुत सहनशीलता की शिक्षा मिलती है, घर गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए ये शिक्षा मिलती है। और यहाँ जब ये दक्ष के यज्ञ का वर्णन समापन होता है, कथा पूरी होती है, यहाँ पांच अध्याय दूसरे शुरू होते हैं। ये सात अध्यायों का यज्ञ का प्रसंग पूरा हुआ। पांच अध्यायों में अब स्वयं मनु के बेटे उतान पा, उनके पहले बेटे उतान पाद के वंश का वर्णन आता है। चौथे अध्याय में एक बेटे के वंश का वर्णन है, पांचवें स्कंध में बड़े बेटे के वंश का वर्णन है। तो स्वयं मनु के दोनों बेटों के वंश का वर्णन आता है। उतानपाद राजा की दो स्त्रियों का नाम, वैसे बहुत स्त्रियां थी लेकिन दो का नाम लिखा है। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। रुचि सुनीति का मतलब जो नीति के ऊपर चले, मर्यादा में आए। सुरुचि का मतलब जो मन मानी करे, जैसे चाहे जैसे मन में आए वैसे करे। सुनीति के घर में बेटा हुआ, उसका नाम था ध्रुव। ध्रुव का मतलब अटल, जो हिलने वाला नहीं है। और सुरुचि के घर में जो बेटा हुआ उसका नाम था उत्तम, जो तत्कालीन तो बड़ा हो जाएगा लेकिन समय से पहले समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन की बात है, पांच अध्याय में अर्थात ध्रुव भक्त का चरित्र है। अर्थ का मतलब धन, राज्य, संपत्ति, ऐश्वर्य। इसकी प्राप्ति पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होती है। पांच अध्याय में ये वर्णन है। तो एक दिन पांच साल का छोटा ध्रुव अपने पिता उतानपाद की गोद में राजसिंहासन के ऊपर बैठने के लिए चढ़ा। तो पांच में इसलिए पत्नी सुरुचि ने उसको नीचे झपट के उतारा। ब्रह्मा तो नहीं देख सकते, तुम्हें यहां अगर बैठना है तो जाओ, भगवान की प्रार्थना करो, कहो मेरे पेट में तुम डालो और तुम जब मेरे पेट से जन्म लोगे तब यहां बैठने के अधिकारी बनोगे। सुरुचि ने पहला तो बहुत अच्छा कहा, जाओ भगवान के पास। लेकिन भगवान की भक्ति करने के बाद भी जन्म देना पड़े, ये तो भगवान की भक्ति का अपमान हो गया। तो सुरुचि की वाणी है, भगवान की भक्ति का अपमान हो गया। ध्रुव छोटा बालक था लेकिन क्षत्रिय था, क्रोध आ गया, अगर अंदर जलने लगा। बच्चा था, सीधा माँ के पास आया। सुरुचि को कहा, माँ माँ, माने का बेटा क्या हुआ? बोला, पिताजी ने इस तरीके से पिताजी बहुत ना मेरे को मैया ने बैठे नहीं दिए। सुनीति कहते, बड़ी रानी तो मैं हूं लेकिन आपके पिता उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन अच्छा ही हुआ बेटा, जब राजा किसी को न्याय नहीं दे सके तो भगवान के पास जाना चाहिए। बेटा कहते, भगवान वहां कहां मिलेगा? सुनीति कहती है, भगवान तो वन में सब जाते हैं मिलने के लिए, राजा महाराजा राजकोट के वन में चले जाते हैं। सुनीति ने अपने बच्चे को वन में जाने का आशीर्वाद दिया और ध्रुव यहां से वन के लिए रवाना हो गया। पांच साल के बच्चे। अब यहां एक लिखा है, जैसे नशरी का वृत्त में ब्रह्मांड भ्रमि से कोई भागीवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता दीजिए। ब्रह्मांड में तो असंख्य जीव आते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, तो आना जाना चालू है। कोई भाग्यशाली होता है, भगवान श्री कृष्ण कृपा करके गुरु मिलाता है और गुरु उसको भक्ति का बीज देता है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। तो ध्रुव गुरु को ढूंढने के लिए नहीं जा रहा था लेकिन भगवान को पाने के लिए जा रहा था, इसलिए भगवान ने नारद जी को भेज दिया।
तो भगवान ने नारद को भेजने की जरूरत कर दी है, परीक्षित गुरु को ढूंढने नहीं गया था, भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को वहां भेज दिया। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आपकी दृढ़ संकल्प है अगर आपका और आपकी श्रद्धा अटूट है तो भगवान ऐसे महान साधु को भेजेगा जो आपको भगवान से मिलाने का साधन बनाएगा। लेकिन पहले आपके अंदर विश्वास दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब दुरु को सामने नारद भी आए और नारद जी का बेटा तुम छोटे राजपुत्र कहाँ जा रहे हो? प्रबंध में जा रहा हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ। माँ ने कहा है भगवान की प्राप्ति होनी है। छोटे बच्चे हो, वन के अंदर इतना बड़ा भयानक पशु रहते हैं, इनसे कहाँ जाओगे? चलो मुझे प्रणाम नहीं किया, छोटा बच्चा था, बोला भगवान को मिलने का रास्ता बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो मेरे को जाना। नारद ने देखा कि ये शिष्य पक्का है, संकल्प दृढ़ है इसका। जब नारद ने 12 अक्षर का मंत्र बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका ऋषि नारद है। और ध्रुव को कहा अब तुम यहाँ यमुना के किनारे मधुबन में जाके इस मंत्र का उच्चारण करो, भगवान की प्राप्ति होगी। तो गुरु ने शिष्य को परखा। हंस की बात याद आती है, एक राजस्थान में संत हुए हैं दादू। एक पुलिस का आदमी पुलिस से रिटायर हुआ तो मन में आया कि गुरु करना चाहिए। पुलिस के काम में तो बहुत था, मारा मारी करनी पड़ती है, तो अब कम से कम रिटायरमेंट के बाद गुरु का शरण लेना चाहिए। पता लगा दादू बड़े अच्छे संत से जाता हूँ उसके पास। दादू के गांव के पास जब पहुंचे तो एक आदमी बिल्कुल गंजा सामने आया, उसको बार एक भी नहीं था और इसने कहीं पढ़ा था कि अगर गंजा आदमी सामने आ जाए तो आपका काम नहीं होगा। ये पुलिस का तो पहले ही था, गंजे को जो देखा तो उसको सर के ऊपर दो तीन दे मारी और कहा सामने आ गया, बता दादू का घर कहाँ है? उसने बोला ये सामने वाली झोपड़ी दादू की, ये जाके झोपड़ी में बैठ गए। सब लोग आए सत्संग करने के समय जब अंदर से आदमी निकला तो वही जिसको दो चार मारे वो आके वहां बैठ गया। इसको तो आके शर्म ऐसी आने लगी कि क्या मैं गुरु का शरण लेने आया और क्या मैंने कर दिया। सब लोग जब उठ गए सत्संग से तो गुरु जी गलती हो गई। गुरु जी हंसते हैं, कहते बेटा मिट्टी का मटका भी लोग बजा के लेते हैं कि पक्का है कि कच्चा है, तो गुरु को बजा के ले रहा है तो ठीक है। गुरु को भी बजा बजा के लिया है। तो नारद जी अच्छी तरह से, तो ध्रुव का चरित्र ऐसा दृढ़ संकल्प का चरित्र है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 100 बार गदाधर पंडित से छोटा गोपीनाथ ने भागवत में ध्रुव का चरित्र सुना। 16 साल में 100 बार 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 सुना का अगर ध्रुव जैसा संकल्प भगवान को प्राप्त करने का एक उसका एक परसेंट भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इतना बच्चे में कितनी कितना संकल्प था राज छोड़ के और एकदम चल पड़ा भगवान को प्राप्त कर। पहले महीने में तो खड़े खड़े केवल यमुना का पानी पिया, दूसरे महीने में फल फूल खाए, तीसरे महीने में तो केली पत्ते खाए और फिर कुछ भी नहीं खाया, केवल सांस ले रहे और खाना ब्रह्मांड की हवा जैसे बंद हो जाए। तो भगवान ने गरुड़ के ऊपर चढ़ के आके गुरु को दर्शन दिया। भगवान सामने खड़े हैं, गुरु आंखें बंद करके हृदय में भगवान को देख रहा है। भगवान ने कहा मैं इनको दर्शन देने के लिए आया और ये आंख नहीं खोल रहे हैं। तो भगवान ने अंदर से दिखने वाले दर्शन को छुपा दिया। तो गुरु ने आंखें खोली तो सामने वो ही देखा जो अंदर था। तो ध्यान में योगी क्या देखते हैं, चतुर्भुज भगवान विष्णु का रूप देखते हैं और वही विष्णु सामने था। अब गुरु के मन में प्रार्थना करने के लिए इच्छा हुई लेकिन पढ़ा भी नहीं था, अभी स्कूल भी नहीं गया था। तो भगवान ने अपना शंख जो हाथ में था और गुरु के कपोल को छुआ दिया और गुरु भगवान की प्रार्थना करने लगे। और उस प्रार्थना में गुरु जी एक विशेष बात कहते हैं कि भगवान मैं तो अपने पिता से बड़ा राज मांगने के लिए आपकी प्रार्थना करने को आया था, ये मेरी मूर्खता थी।
जब आपका दर्शन हो गया ना तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मेरी इच्छा पूछते हुए कांच के टुकड़ों जैसी थी और आप हीरा मुझे मिल गए हैं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब भगवान बोलते हैं ध्रुव ये तो बहुत अच्छा, तेरा हृदय पवित्र हो गया, साधना करने से अंतःकरण की शुद्धि हो गई, तेरी इच्छा तो शुद्ध हो गई, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि तेरे पिता और पितामह ब्रह्मा से भी बड़ा तुम्हारे लिए मैंने राज बनाया है ध्रुवलोक, और उस ध्रुवलोक में तुमको रहना है, उससे पहले राज करो। तो भगवान ने अब उसको, इसलिए हम कहते हैं कि भगवान के पास कुछ मांगने क्यों, ये भागवत भगवान है ये सब इच्छाएं पूरी करता है, जो भी इच्छा आपकी है सर्व काम सर्व सर्व काम, जो भी कामना है वो पूरी हो जाएगी, कोई भी कामना नहीं है तो भी भगवान मिल जाएगा, मोक्ष की कामना है तो मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी, तो सब कामनाएं पूरी करता है भगवान। अगर गया तो कामना से तो भगवान ने कामना पूरी कर दी उसकी, लेकिन प्रोसेस में पूजा के प्रोसेस में कामना भोग की ही समाप्त हो गई, सेवा में बदल गई। तो भगवान के पास कामना के लिए जाएंगे तो भोग सेवा में बदल जाएगा। एक सिद्धांत दो शब्द सुन लिए, सिद्धांत सुन लीजिए, हमारा स्वरूप सेवा का है, सेवा हमारा धर्म है, और भोग हमारा बंधन है, भोग बंधन है, भोग रोग है, भव रोग है, भव रोग का मतलब जन्म जन्म मृत्यु के चक्कर में आने का कारण भोग है, और सेवा हमारा स्वरूप है। तो भगवान के पास भोग के लिए जाएंगे तो भी भगवान भोग को शुद्ध करके सेवा देगा। बहुत ये जीवन में समझ में आ जाए कि हम सेवा के लिए हैं, सेवा ही हमारा धर्म है, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, एमबीए नहीं थे, पीएचडी नहीं थे, बीए नहीं की थी, लेकिन बच्चों के नाम रखते थे गोपालदास रामदास धर्मदास, सबके लिए दास रखते थे कि सेवा करना तुम्हारा धर्म है। ये बहुत बड़ा विज्ञान हमारे पूर्वजों को आता था कि सबके नाम के पीछे दास लगा देते थे कि आपका काम सेवा करना है, और हमने उस नाथ नाम को आजकल निकाल दिया बिल्कुल, हम तो खास बनने के चक्कर में। तो ये दुनिया में बंधन का कारण है। तो ध्रुव महाराज वापस जब वहां से भगवान का दर्शन करके लौटे तो उदान पान ने स्वागत किया, पिता ने गले लगा दिया, सारे पूजा के लिए आए, माता सुनीति को पहले प्रणाम किया, तो सुनीति से पहले सुनीति को ध्रुव ने प्रणाम किया। इसको कहते हैं भगवान का भक्त किसी से द्वेष नहीं करता है, और कहा मां तुमने बड़ी कृपा की, तुम्हारे कठोर वचनों ने मुझे भगवान को मिलाने का साधन बना दिया। इसलिए कहते हैं जीवन में जब कोई कष्ट आता है तो भगवान को याद करने का मौका मिल जाता है, और भगवान की तरफ जाएंगे तो कष्ट तो दूर हो जाएगा लेकिन भगवान भी मिल जाएगा। तो माता आपने बड़ी, और फिर उदान पास चले, ध्रु महाराज राजा बने। ध्रुव के राज में एक दिन ध्रुव का छोटा भाई उत्तम यक्ष के द्वारा मारा गया, तो ध्रुव महाराज को विरोध आ गया, यक्ष के साथ युद्ध किया और यक्ष को मारने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आगे कहा बेटा, स्वयं मनु ने आगे कहा बेटा, एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, तुम यक्ष का वंश क्यों नाश कर रहे हो? भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो छोटों के ऊपर दया करे, बराबर वालों के साथ मित्रता करे और बड़ों की सेवा करे, तुमको सबको मारना नहीं चाहिए। और ध्रुव ने अपने पितामह की बात मान ली, और उस वक्त यक्षों का राजा कुबेर प्रकट हो गया, और कुबेर ने कहा ध्रुव आपने वरुण की आज्ञा का पालन किया, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। और यहाँ एक बात सीखने को मिलती है, भगवान के दर्शन के बाद भी ध्रुव को क्रोध आया, लेकिन स्वयं मनु एक भागवत है, 12 महात्म भागवत में उसकी शिक्षा से क्रोध का निवारण हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भक्तों का संग भगवान से मिलने के बाद भी जरूरी है। भगवान मिलता भक्तों के संग से है, लेकिन भगवान मिलने के बाद भी भक्तों का संग जीवन का मुख्य अंग है, उसके बगैर फिर आदमी भटक जाता है। आप भागवत में बार बार ऐसे देखने को मिलेगा। अब गुरु महाराज समय आने के ऊपर अपना राजपाट छोड़ के बद्री आश्रम चले गए। वैसे हरिद्वार में ऋषिकेश में एक जगह है लक्ष्मण झूले के पास, वहाँ कहते हैं गुरु तपस्या करने के लिए बैठे, गंगा का आवाज ज्यादा हो रहा था तो गुरु वहाँ से जाने लगे। गंगा जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरु आप जैसा भक्त यहाँ आता है कई पापी स्नान करते हैं और आपका दर्शन और आपके स्पर्श से हम पवित्र होते हैं। पिता माँ गंगा मैया कहती है अब क्यों जा रहे थे? बोले यहाँ पानी का शोर ज्यादा है। गंगा ने कहा अब यहाँ शांत होंगी। उस टुकड़े में ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के नीचे गंगा बिल्कुल शांत बैठी है, वहाँ कोई किलकिल गंगा में नहीं। और फिर गुरु महाराज बद्री आश्रम में तपस्या किया। समय आया वे कुछ के विमान नीचे उतरा, नंद और सुनंद उसके चालक। कहते गुरु आपका तपस्या पूरी हुई, आप आइए। उस वक्त मृत्यु सामने खड़ी होगी, कहती है मृत्यु संसार है गुरु महाराज, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। मृत्यु के सर के ऊपर पांव रखा और गुरु विमान में चढ़ गए। मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के विमान चला, विमान चला। गुरु ने करो मेरी माँ जिसने मुझे भगवान को मिलाने का साधन बता था उसको साथ लेके चलूंगा, उसके बगैर नहीं जाऊंगा। इसके पर में श्री प्रभुपाद ने लिखिए, कभी आप पढ़ेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। श्री प्रभुपाद लिखते हैं पता नहीं हमें योग्यता है कि नहीं है, भविष्य में कोई ऐसा हमारा शिष्य गुरु की तरह बने और प्रार्थना करे कि हमको भी कभी भगवत धाम ले जाया जाए। इतनी बड़ी नम्रता का श्री प्रभुपाद के शब्द वहां लिखे हैं कि शिष्य या पुत्र, जैसे पुत्र का शब्द का अर्थ है जो पूत नाम के नरक से बचाए, तो ऐसे शिष्य भी गुरु का उद्धार करे ऐसे भाव लेता है। तो आज गुरु महाराज ने जब ऐसे कहा तो सुनंद के लिए वो आगे वाले विमान में आपकी माता जा रही है। वस्तु के तो इसी पीढ़ियां आगे की और पीछे की, ननियाल की और दरियाल की, सबका उद्धार हो जाता है। कोई एक जीवन में भक्त बन जाए अगर तो गुरु जैसा, तो यहाँ एक शिक्षा मिलती है कि आपको जो थोड़ा सा भगवान के पास रास्ता भी बता दे, कभी भगवान मिल जाए तो उसको भूलना मत, उसका याद भी हमेशा रखना। तो यहाँ दूध के पांच अध्याय पूरे होते हैं। दूध के वंश में उसका बेटा उत्कल तो त्यागी था, उसने राज किया नहीं और दूध के दूसरे बेटे के द्वारा उसको संवत्सर कहते हैं उसने राज चलाया। और फिर एक कुल के अंदर एक राजा अंग हुआ और महाराज अंग को कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और यज्ञ के प्रताप से उनको पुत्र तो हुआ, लेकिन उनको पुत्र हुआ वैण। और अंग महाराज की जो पत्नी थी वो काल की दोहित्री थी, काल की बेटी की बेटी। तो काल के नानी के वंश का उस बच्चे के ऊपर इतना काल का प्रभाव था कि वैण बड़ा बदमाश निकला, वो अधर्मी निकला, सबको दुख देने लगा। आज अंग बोलता है पहले बेटे के न होने का दुख था और अब बेटा इतना बुरा निकला है कि उस दुख से भी ज्यादा दुख है। इसलिए एक बात समझ में आती है कि जीवन में कब तो बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो दुख देते हैं और कभी बच्चे ही ऐसे घर में आते हैं जो अच्छी तरह से दुख देते हैं। और ऐसी कई कहानियां मिलती हैं इतिहास में कि कुछ पुराने शत्रु घर में बच्चे बन के आते हैं और सब कुछ लूट के ले जाते हैं। ऐसी कहानियां हैं, लेकिन आज समय नहीं है बताने का, उसको समय का अभाव है। अपने पास मूल पाठ भी करें तो 21 घंटे में पूरा होता है और यहाँ हमारे पास 10 घंटे में सब कुछ पूरा करना है 7 दिन में, तो अपन ये कथा तो नहीं कर पाएंगे। इस वंश में आगे वेण राज और महाराज अंग कहते हैं अब इस राज में रहना ही नहीं है, अच्छा हुआ कि बच्चा बुरा हुआ तो संसार से बैराग हो गया। कभी भी बुरा बच्चा भी संसार के मोह से मुक्त करा देता है। तो इसने राज रात को राज छोड़ा और वन में चले गए। महाराज राज छोड़ के चले गए और भगवान की भक्ति करने चले गए। अब राज नहीं है तो ऋषियों ने कहा क्या किया जाए। सुनी थी जो माँ थी वैण की, उसने बोला मेरे बेटे को राज को बोला राज को देखते जब तक गलती नहीं करता है तब तक राज करे। वैण को बिठाया राज के लिए, बोला यज्ञ बंद कर दो, भजन बंद कर दो, भगवान की पूजा बंद कर दो, मेरी पूजा करो। राजा के अंदर भगवान विष्णु का प्रवेश होता है। ऋषियों ने कहा
वेर आप कितनी बड़ी बड़ी परंपरा ध्रुव के संतान हो, उस वंश के अंदर भगवान के महान भक्त हुए, तुम कहां भगवान की भक्ति बंद करा देते? बोला आप ऋषि मालूम नहीं है, राजा के अंदर भगवान का अंश होता है, अब मेरी पूजा करो। अब ऋषि ने देखा ये सुधरेगा नहीं, उन्होंने ओंकार किया, ओम का उच्चारण किया और वेर का शरीर छूट गया। उनको इतनी शक्ति, पहले ऋषि के अंदर ये शक्ति थी कि राजा को राज दे भी सकते थे और ले भी सकते थे, अब वो वेर का शरीर छूट गया। सुनीत ने उसके शरीर को जेल में रख दिया, फिर कोई राजा नहीं, ऋषियों को तो राज करना नहीं था, ब्राह्मण राज करने के लिए नहीं है, वो तो मार्गदर्शन के लिए है, फिर कोई राजा नहीं है तो ऋषि ने काम क्या किया जाए? बोले इस वेण से चंद्र के ध्रुव के वंश को लुप्त नहीं होने देंगे। उन्होंने उस शरीर के अधोभाग का मंथन किया और मंथन किया तो उसके अंदर से काला कलो का आदमी निकला, उसका नाम हो गया निषाद। बोले तुम जाके वन में रहो, तो जो पाप का भाग था वेण का वो निषाद के रूप में निकला, जंगल में चला गया डाकू बन के। तब उनके दोनों हाथों का मंथन शुरू किया, ऋषियों ने अपने मंत्रों के जरिए सीधे हाथ से पृथ्वी महाराज भगवान का अंश अवतार प्रकट हुए और उल्टे हाथ से अर्ची प्रकट हुई, पृथ्वी और अर्ची लक्ष्मी और नारायण के रूप में, आज क्षत्रिय के रूप में राजा के रूप में प्रकट हुए। 11 अध्यायों में यहाँ पृथ्वी महाराज के चरित्र का वर्णन है गुरु वंश में, जिसने सबकी कामनाएं और इच्छाएं पूरी की। तो पृथ्वी और अर्ची अयोजन है, वो अयोजित है, किसी माता पिता से पैदा नहीं हुए। ये मंथन की बात आपको इसलिए कहते हैं कि आगे नवे स्कंद में सूर्य वंश में महाराज हुए हैं निधि। महाराज निधि के शरीर का मंथन किया गया तो उससे जो पैदा हुआ उसका नाम हुआ जनक, और जो नदी उसने बसाई उसका नाम हुआ मिथिला, क्योंकि वो मंथन से पैदा हुआ तो नगरी का नाम हुआ मिथिला और राजा का नाम हुआ जनक। तो जनक राजा का नाम प्रेसिडेंट जैसे होता है, नाम है आदमी का नाम नहीं। जो सीता माता के पिता जनक है ये 21वीं पीढ़ी में जनक है, उस पहले पीढ़ी जनक है और इनका नाम है क्षीरध्वज। तो ये मंथन के द्वारा ऋषियों को जीवित करने में शक्ति होगी। तो यहाँ पृथ्वी महाराज प्रकट हुए तो सारे देवता आके उसको भेंट देने लगे, किसी ने रथ दिया, किसी ने अक्षय बाण दिया, किसी ने राज करने के लिए शासन करने की सारी सामग्री दी, सबने उत्तम उत्तम भेंट दी और बहुत लोग उनसे प्रार्थना करने की। पृथ्वी कहे कि जब तक मैंने कुछ नहीं किया है तब तक प्रार्थना मत करो, लेकिन ऋषियों ने कहा नहीं, ये महान भगवान का अवतार है, पूरे विश्व के अंदर ऐसा राज चलाएगा और पृथ्वी महाराज राज चलाने के लिए शुरू हो। तो सारी प्रजा ने कहा महाराज पेट देखो हमारा हड्डी जाकर पीठ से लग गई है, हम काम करते हैं धरती में हल चलाते हैं लेकिन कुछ अनाज नहीं पैदा हो रहा है। फिर सूरत के ऊपर चढ़े, बाण का अनुसंधान किया और धरती के ऊपर और धरती गाय का रूप लेके भागने लगी। फिर तुम पीछे गए, धरती गाय के रूप में खड़ी होकर हाथ जोड़ के कहती है महाराज आप राजा हो, हमारी रक्षा करना आपका धर्म है, आप हमको मार क्यों रहे और हमारी प्रजा को भोजन क्यों नहीं दे रहे? तब पृथ्वी माता कहती है कि वेण जैसे अनाचारी अत्याचारी दुष्ट राजाओं के कारण सारा बीज मैंने अंदर छुपा लिया, इससे एक शिक्षा मिलती है कि कहीं कोई दुनिया के अंदर ऐसा शासक क्रूर हो जाए, अपराधी हो जाए तो धरती से उपजान कम हो जाता है और हर चीज मिलना मुश्किल हो जाती है। अब धरती कहती है आप महाराज राजा हैं तो आप ऐसे कीजिए कोई पात्र बनाइए और आप जिस जिसके लिए भोजन चाहिए उसकी व्यवस्था मैं कर देती हूँ। तो इंद्र को बछड़ा बना के उस गाय की पृथ्वी के देवताओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, ऋषियों के मैं व्रत बृहस्पति को बनाया बछड़ा और सारे ऋषियों के भोजन की व्यवस्था की, स्वयं मनु को पात्र बनाया और सबके लिए मानव के लिए भोजन की व्यवस्था की, फिर तो शेर के द्वारा पशुओं के लिए शांतु के हर एक के भोजन की व्यवस्था पशु महाराज ने की। राज के अंदर पक्षी वृक्ष पशु ये सब प्रजा में आए, इनका सबका पालन किया पृथ्वी महाराज ने। और फिर पहले पशु महाराज ऐसे राजा है जिन्होंने नगर बसाया, शहर बसाए। पहले लोग बन जाए घूमते रहते थे, फिर कहा नहीं एक जगह रह जाओ। ब्राह्मण शिक्षा से, क्षत्रिय रक्षा से, वैश्य वाणिज्य गौ रक्षा से और सेवक सेवा के द्वारा अपना निर्वाह करें। और फिर जमीन को सीधा करके प्रभु महाराज ने खेत खलिहान और ऐसे पहली बार जो है उन्होंने स्थापना की। और फिर अश्वमेध 99 यज्ञ शुरू किए और यज्ञ 99 पूरे हुए तो इंद्र को अपनी कुर्सी के ऊपर खतरा दिखाई दिया। इंद्र घोड़ा चलाने लगा, महाराज शिवू का बेटा अश्व विजय इंद्र को पकड़ के लाया, लेकिन इंद्र को फिर छोड़ दिया। दोबारा इंद्र आया तो पृथ्वी उठने लगा। अश्विनी जी यज्ञ करा रहे थे, महाराज यज्ञ में बैठे को उठना नहीं चाहिए। और तब ब्रह्मा जी आके कहने लगे, पृथ्वी महाराज देखो इंद्र अभी सन्यासी के कपड़े पहन के आया है और चोरी कर रहा है। ये इंद्र के कारण कई लोग आगे चल के धर्म के नाम में रावण की तरह सन्यासी के कपड़े उठा के सीता को हरण करने लगेंगे तो बड़ा अधर्म हो जाएगा। छोड़ दो यज्ञ करना, छोड़ नहीं कर तो क्या होगा। छोड़ यज्ञ होने से छत्रकृतु होता है और छत्रकृतु को इंद्र बनने का अधिकार हो जाता है। वो क्वालिफिकेशन है इंद्र बनने के। ब्रह्मा जी की आज्ञा के ऊपर पृथ्वी ने यज्ञ करना छोड़ दिया। आखिरी भगवान विष्णु प्रकट हुए और इंद्र आए। भगवान विष्णु ने कहा आपने बड़ों की आज्ञा का पालन किया, ब्रह्मा जी की आज्ञा का मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। और इंद्र ने क्षमा कर दिया। यज्ञ विध्वंस करने के बाद, भंग करने के बाद इंद्र को गले लगाया पृथ्वी महाराज ने। तो ये दया और क्षमा की मूर्ति पृथ्वी महाराज को भगवान विष्णु कहते हैं आपके राज में सब सुखी रहे। अब समय आने के ऊपर आपको चार कुमार आकर उपदेश देंगे और आपका जीवन सफल होगा। अब पृथ्वी महाराज प्रजा को शिक्षा देंगे और फिर अपने संतान को राज देंगे। देने की तैयारी कर रहे थे तब सनक आदि कुमारों ने आके पृथ्वी महाराज को विशेष उपदेश दिया और उनके देखो भगवान के दर्शन के बाद फिर भक्तों के संग की और उपदेश की जरूरत पड़ी और पृथ्वी आरती पर तपस्या करके भगवत धाम गए। यहाँ पृथ्वी महाराज के वंश में आगे कथा आती है एक बहुत बड़े कर्मठ राजा थी जो बड़ा अच्छे शासक थे। उसका नाम था प्राचीन बरहित। प्राचीन बरहित महाराज जितने यज्ञ किए और यज्ञ के अंदर इतनी पशु बलि थी कि उनका नाम यज्ञ करने वालों में हो गया और वो घास उठा के पूरी पृथ्वी से बिछाओ तो पूरी पृथ्वी जल जाए। एक दिन नारक और उनके पुत्र हुए दस प्रचेता उनका नाम हुआ। और एक दिन वैष्णु ने कहा पिताजी आज्ञा क्या है। बोला बेटा एक तो परंपरा चलाओ, राज शासन करो, धर्म के ऊपर चलो। तो बेटे तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर के लिए रवाना। नारायण सरोवर चार सरोवर बहुत बड़े मुख्य सरोवर भारत संस्कृति में है। एक तो मान सरोवर है जो हिमालय में ऊपर है, भगवान शंकर जी यहाँ रहते हैं। एक पंपा सरोवर है जहाँ सबरी रहती है, भगवान राम से उनका मिलन हुआ था। ये किसकंदा में आता है, ये इस वक्त कर्नाटक और आंध्रा के बॉर्डर के ऊपर पंपा सरोवर है। तीसरे सरोवर को बिंदु सरोवर कहते हैं, वो कल हमने उसकी चर्चा की थी जो गुजरात में। और चौथा नारायण सरोवर है, ये भी कच्छ के अंतिम समुद्र के किनारे के पास मीठा समुद्र है, उसका नाम है नारायण सरोवर। नारायण सरोवर पे ये बच्चे तपस्या करने गए। इसकी कथा थोड़ी बाद में आती है। प्राचीन बलिद के घर में नारद जी एक दिन आके कहते हैं ध्रुव का वंश है भगवान के परम भागवत का, और ये यज्ञ करके भगवान की भक्ति तो कर नहीं आए, यज्ञ कर रहा है। नारद का यज्ञ क्यों कर रहे हैं पता नहीं, ये पुरोहित कहते हैं यज्ञ करो मैं कर रहा हूँ। नारायण का ऊपर देखो तो आकाश में देखता है तो सारे पशु ऐसे क्रोध से देख रहे हैं। बोला ये क्या है। बोला जिन बच्चों की तुमने बलि दी है या यज्ञ के लिए जिन लोगों को तुमने दान दिया है वो सब लोग तुम्हारे से बदला लेने के लिए कहते। बोला क्यों, ऐसे क्यों है। सबको एक कथा बताई नारद जी ने प्राचीन बलि, उसको नारद का उपदेश कहते हैं। उस कथा का नाम है पुरंजन उपख्यान। पुर का मतलब होता है नगर और रंजन का मतलब होता है उसमें रंजन करने वाला। ये शरीर पुरी है और आत्मा इसमें रंजन करता है या सुख भोगता है।
तो पुरंजन उपख्यान कैसे है हम उसको लंबा न करके सीधा बताते हैं। इस शरीर को एक नगर कहा गया है। पुरंजन एक राजा है, पुरुष है, जो जीवात्मा है। कई लोगों का भ्रमण करके भारतवर्ष में जब आया तो उसने एक बहुत सुंदर सुंदर कन्या को देखा। सुंदर कन्या से पांच फन वाला सांप रक्षा कर रहा था। 11 सैनिक उसके चारों ओर से अंग रक्षक थे और हजारों सैनिक आए उनके पीछे चल रहे। महाराज पुरंजन ने उसको देखा और उस कन्या को पसंद किया और उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ये कन्या बुद्धि है, पांच फन वाला सांप, पांच प्राण है, प्राण अपान समान ज्ञान उदान। 11 सैनिक मन और 10 इंद्रियां हैं और अनेक सैनिकाएं इच्छा है जो इंद्रियों में भरी होती है। तो बुद्धि के साथ बुद्धि लड़ती है, उसके साथ जीवात्मा ने तदात्म्य कर लिया, विवाह कर लिया। अब जीवात्मा आंख के द्वारे देखने के लिए घूमने जाए, कान के द्वारा सुनने के लिए चला जाए, जीभा के द्वारा खाने के लिए चला जाए, नासिका से घूमने के लिए चला जाए। तो ये भोग करने लगा सभी बुद्धि इस पूरी के अंदर और भूल गया, वो अपने आप को शरीर मान के बैठ गए। आप इसका ऐसे अनुभव करें, जब आप कभी टेलीविजन के ऊपर कोई सीरियल या फिल्म देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप उस हीरो या हीरोइन से इतना तदात्म्य कर लेते हैं, इतना अपने आप को उसके साथ जोड़ लेते हैं कि उसका दुख आपको अपना दुख लगता है, उसका सुख आपको अपना सुख लगता है, और उसको दुख आता है तो आपको रोना आता है। देखें आपको रोना आता है ना कभी, तो आपको रोना क्यों आता है? वो तो पैसे कमा रहा है और आप घर में उसमें रो रहे हो। कभी देखा है कि वो तो कमा रहा है और हम रो रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने उसके साथ इतना मेल कर लिया है कि हम अपने आप को भूल गए। तो जीवात्मा अपने आप को भूल गया और जीवात्मा के साथ उसका एक मित्र साथ में हमेशा रहता है जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ता है। उसको कहते हैं अज्ञात सखा, अज्ञात मित्र, वो परमात्मा है। एक दिन तो घूमने जब वापस नहीं आया तो बुद्धि नाराज हो गई, कहां चले गए थे? उसको मनाया बहुत। फिर आगे कथा बता तो नारद कहते हैं एक राजा काल यवन, उसकी बेटी, उसका नाम जरा, और वो विवाह करना चाहती थी और पुरजन से विवाह करना चाहती थी। बोले ये जरा कौन है? बोले ये बुढ़ापा है, ये सबसे विवाह करना चाहता है, सबके सर के ऊपर आगे टपकता है और कोई भी उसको नहीं चाहता। तो पुरंजन ने मना कर दिया। तो जरा ने कहा कि तुम्हें चंड वेग देता हूं काल, और इसके पास सैनिक है 360 काले 360 गोरे, जाओ आक्रमण करो, चोर को साथ लेके जाओ। और फिर पुरंजन की लड़की के ऊपर काल यवन के सैनिकों ने आक्रमण किया। 5 सेनापति कम से कमजोर होने लगे और 5 फन वाला कम सांप घबराने लगा। ये कथा ऐसी है कि वो समय काल यवन है, बुढ़ापा जरा उसकी कन्या है, 365 दिन गोरे सैनिक हैं, 365 रात काले सैनिक है, और ज्वर बुखार है जो मृत्यु से पहले आता है, ये शरीर के ऊपर आक्रमण करता है और तब शरीर से इंद्रियां आंख देखना बंद करती है, कान में सुनना बंद हो जाता है, यहाँ से आगे सब स्थल होने लगते हैं, प्राण दुखी हो जाते हैं। और तब पुरंजन का ध्यान करते हुए मरा। तो दूसरे जन्म में पुरंजन स्त्री बन गए। भागवत में ऐसा लिखा है जो अभी स्त्रियां हैं वो पहले पुरुष थी, मरते समय पुरुषों का ध्यान करते हुए मरी तो पुरुष हो गई, और जो पुरुष थे वो पहले स्त्रियां थे, ऐसा भागवत में वर्णन है कि अंत समय जिसका ध्यान करते हुए कोई मरता है वही उसको अंतमति सोई बची। एक बार हमारे भक्त सुखताल, सुखताल वो जगह है जहाँ सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाई है। तो आजकल भी किसी का अगर सदगति नहीं होती है किसी कारण से तो लोग उधर जाके भागवत का पाठ करते हैं। तो एक भागवत की कथा हो रही है, अंतमति की बात कर रहे हैं। तो हमारे भक्त वहां प्रचार के लिए गए हुए थे, शिक्षा धर्म देने के लिए। तो कहा महाराज आप लोग भी आके भोजन कर रहे हैं, भागवत का भंडारा चल रहा है। साधु ये भी चले थे कि भाई भागवत का भंडारा है तो पूरी तो खाई, खीर खाना, हलवा खाना, पकौड़ा खाना, हम खाने के बाद थोड़ा ये कोको कोला पी। कोको कोला तो हम नहीं पीते, चाय है तो हम तो नहीं पीते। बोले नहीं ये पीनी पड़ेगी। बोले क्यों पीनी पड़ेगी? बोले जिसने भंडारा किया है वो बोलते हैं कोको कोला पीनी पड़ेगी। बोले नहीं पीनी, बोले फिर जिसने कराया उसके पास चलो। तो उसके पास गए तो बोले कोको कोला हम नहीं पीते। बोला नहीं भाई आप पियो। बोले नहीं पीएंगे। तो क्यों पिलाना चाहते हैं? तो वो बोलता है हमारा दादा के मैं बोला कि मैं इंग्लैंड से आया हूँ, मैं गुजरात का हूँ, पर हमारा दादा भगवान शंकर भोलेनाथ का बड़ा भक्त था। अंत समय जब बाबा का आया तो हमने कहा बाबा तुम बोलो भोले, बाबा तुम बोलो भोले। मरते मरते बाबा ने बोला कोको कोला, भोला याद नहीं आया कोको कोला याद आया। अंत समय भगवान याद नहीं आया, सारी उम्र जो पीली कोको कोला वो किया जाए तो काका को कोको कोला पिलानी पड़ेगी, नहीं तो काका परेशान हो जाएगा। तो अंत मती तो गति। अब ये जिक्र ही मनी पुरंजन और मल्याध्वज राजा के साथ उसका विवाह हुआ। राजा बड़ा धर्मात्मा था, भक्तिमय था। एक समय के ऊपर युद्ध करते हुए राजा मर गया। पुरंजन ये जिक्र भी रोने लगे मेरा राजा। उस वक्त अज्ञात मित्र परमात्मा कहता है तुम पहले पुरंजन तुम थे, अब तुम विदर्भी। ये तुम्हारी बुद्धि के साथ पहचान के कारण तुम दुखी हो रहे हो। तुम मेरे मित्र हो, तुमने मुझे भुला दिया, इसलिए संसार में भटक रहे हो। तुम मेरी तरफ देख लो, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। अब ये जब सुनाया प्राचीन वंश को तो प्राचीन वंश ने कहा अब ये राजपाट मेरे बेटे आएंगे चलाएंगे। समय के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। किस वक्त मौत आएगा कुछ पता नहीं है, कोई जीवन मूर्त पता के नहीं आता है। प्राचीन वंश नारद की शिक्षा से तो तपस्या करने चला गया और यहाँ प्रचेता जो गए थे तपस्या करने वो देखते हैं तो कोई सुंदर संगीत निकल रहा है नारायण सरोवर से। खड़े हो गए तो शंकर जी बाहर निकल के आए। शंकर जी उनको देखते प्रसन्न हो गए। ये भगवान ने दूसरा गुरु के रूप में भगवान शंकर को भेजा। उन्होंने रुद्र ने रुद्र गीत बताया, भगवान विष्णु की उपासना करना सिखाई। भगवान शंकर से दीक्षा लेके प्रचेता पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु ने आके उनको दर्शन दिया और कहा बेटा मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, अब आप जाके अपने पिता का राज संभालिए। और एक बात का ध्यान दीजिए कि वो दक्ष जो शंकर के अपमान के कारण बकरे का सर लग गया था, उसने बहुत तपस्या की है जाकर विंध्याचल में। अब नाश स्थान के ऊपर तीर्थ पे अब उसको भगवान ने क्षमा कर दी। वो आपके पुत्र के रूप में आप जन्म लेगा, आप जाओ राजपाट करो, विवाह करो, उस दक्ष आपके घर में जन्म लेगा। प्रजेता वहां से भगवान का दर्शन करके लौटते हैं तो पिताजी राज में थे नहीं तो राज में जंगल बन गया। तो इनको क्रोध आ गया और क्रोध की अग्नि के सारे धन जलने लगा। भगवान के दर्शन के बाद भी क्रोध आ गया, शंकर की दीक्षा में फिर भी क्रोध आ गया। उस वक्त चंद्रमा देवता जो वनस्पति का देवता है उन्होंने कहा बेटा ये वन प्रदेश की तुम्हारी प्रजा है, अगर यज्ञ के लिए लकड़ी नहीं चाहिए, किसी सेवा में नहीं है तो किसी वृक्ष को भी काटना ये अपराध है, सब जीवित हैं। और तब वनस्पतियों के राजा की पुत्री मृषा उसको कहा कि ये आपको विवाह में देती है कि चंद्रमा ने कहा मैंने इसको अपनी अमृत लाया है उन्हीं के साथ और इसका विवाह। तो उस मृषा का विवाह दस प्रजापति के साथ और दस प्रजेताओं के साथ हुआ। ये एक और अद्भुत कथा है भागवत में। पांच पांडवों के साथ द्रौपदी के विवाह का तो वर्णन सब जानते हैं। दस प्रजेताओं ने एक वृक्ष की पुत्र के साथ विवाह किया और भगवान ने एक वरदान दिया है कि आप दस भाई ऐसे आपस में प्रेम करते हो, आपका एक ही मत है, इसलिए जो आपकी कथा सुनेगा उनके भाइयों में भी प्रेम बढ़ेगा, वो भी सुखी रहेंगे। और आप सबका एक जैसा विचार है, इसलिए आप इस एक लड़की के द्वारा एक पुत्र दक्ष आपका ऐसा होगा जिससे पूरी प्रजा के अंदर दक्ष की प्रजा का विस्तार होगा। आज प्रत्येताओं में विवाह किया, दक्ष उनके घर में पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और फिर दक्ष ने प्रचेताओं ने राज किया। तब नारद वापस आ गए और तब प्रतिदा कहते हैं भगवान शंकर का दिया हुआ मंत्र भी भूल गया। भगवान विष्णु के दर्शन के बाद भी हम संसार में फंस गए। नारद जी ने सब उपदेश दिया, बेटा एक जन्म तो माता पिता से होता है, वो तो शरीर का जन्म है, लेकिन दूसरा जन्म अगर गुरु से हो और शास्त्र शिक्षा से हो तो फिर वो जन्म सार्थक होता है, वही जन्म काम आता है। आप अब भगवान का भजन करो। बोला राजपाल, तब ये बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने दिया कि पेड़ की जड़ में पानी डालने से पेड़ के तने शाखा पत्ते फूल फल सब हरे भरे होते हैं। ऐसे एक भगवान का नाम लेने से, उसकी भक्ति करने से पूरा विश्व संतुष्ट हो जाता है। इसलिए एक शरीर में पेट में भोजन डालोगे तो सारा शरीर रुष्ट पुष्ट हो जाएगा। ऐसे एक भगवान का शरण ले लोगे तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तो सारा संसार अपने आप सुखी हो जाएगा। तो वो तो भक्ति करने चले गए। एक भगवान को तुष्ट करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं। महाभारत में कथा आती है, दुर्योधन ने दुर्वासा को भेज दिया काम वन में, जब वनवास में थे पांडव, कहा जब दोपहर के बाद आप उनका जाके भोजन करके उनको आशीर्वाद दीजिए। द्रौपदी के पास सूर्य का दिया हुआ एक ऐसा पात्र था अक्षय, जब तक स्वयं नहीं खाती थी हजारों को खिला सकती थी। द्रौपदी खा ले तो फिर कुछ नहीं बचता था। दूसरे दिन से दुर्वासा भोजन के बाद द्रौपदी ने खाया और दुर्वासा दसदार युधिष्ठिर के साथ आया और कहा हम भूखे महाराज भोजन करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, प्रबंध करते हैं। बोला हम स्नान करके आते हैं जमुना में। वो जमुना स्नान करने गए, युधिष्ठिर महाराज कहता है कि द्रौपदी भोजन बोला मैंने खा लिया, आप कहाँ से बना। बोला विष्णु को ना तो नहीं कर सकते, दुर्वासा तो बहुत और दुर्योधन ने भेजा ही नहीं था कि तरफ देगा। आप द्रौपदी चिंता में तब कृष्ण भागते हुए आते थे, द्रौपदी भूख लगी है, बोला पहले कुछ नहीं है फिर आप भी देखिए आगे। प्रत्येक पात्र ले किया, पात्र लाए तो उसके अंदर एक दाना चावल का लगा था कि थोड़ा साठ लगा था। कृष्ण ने उठा कैसे मुंह में डाला, बोला मैं संतुष्ट हो गया। और तब कृष्ण कहते भीम जाओ जरा बुला के आओ। दुर्वासा और कृष्ण को भीम वहां जाके कहता है गुरु जी आइए। दुर्वासा जी शिशु कर देंगे और बाहर पानी से निकलते सब डका देते हैं पेट भर के अपना। दुर्वासा कहते हैं आप कुछ खा नहीं पाएंगे, महाराज को 10,000 का ऑर्डर देके आए हैं भोजन का, अब पेट में कुछ जगह नहीं है, करें क्या। शिशु ने कहा गुरु जी अब क्या करें। बोला आप क्या करेंगे, बस ब्रह्मोत के ऊपर करो और भागो। तो भीम पीछे आ रहा है कि 10,000 का ऑर्डर दिया किसी होटल में, भोजन तैयार करो और आप एंटर कैंसिल कराओ, बनने के बाद तो झगड़ा ही होगा और क्या होगा। तो यहाँ से गुरु जी और शिष्य भाग के भीम उनसे जुड़ा। तो एक भगवान संतुष्ट हो जाए तो सब संसार संतुष्ट हो जाता है। यहाँ चौथा एक समाप्ति के ऊपर आता है, प्रसिद्धाओं को नारद के उपदेश से उद्धार हो गया। पांचवा एक शुरू होता है, दूसरे पुत्र उत्तान पर, दूसरे पुत्र स्वयं मनु के प्रियव्रत के वंश से। प्रियव्रत बड़ा पुत्र था लेकिन नारद के खंड में आया, साधु बन गया, आश्रम में रहने लगा। पिता ने कहा बेटा अब तुम राज करो, उतान पास का रंग तो पूरा हो गया। बोला मैं राज नहीं करूंगा, मैं साधु बनूंगा। उसने जाके ब्रह्मा जी को कहा, मनु ने कहा मैंने आपकी आज्ञा से संसार चलाया और अब ये हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी ने आके कहा बेटा इस संसार के अंदर नाक में डले डाली हुई रस्ति की तरह हम सब भगवान के इशारे के ऊपर चलते हैं, आपको प्रजा का पालन करना चाहिए। प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के वचनों को वेदों की वाणी मानी। वो श्लोक वो श्रुति का आचार्य है और पिता स्मृति का आचार्य है मनु, और प्रियव्रत ने नारद को आज्ञा दी और राज करना शुरू किया। प्रियव्रत ऐसे राजा थे कि रात को दिन में बदल दिया, अपने रथ के पहियों से सात समुद्र बना दिए रथमय और पृथ्वी के बड़े विभाग करके द्वीप बना दिए और बहुत बड़ा उनका राज और नाम हुआ। ये ऐसा अद्भुत राजा प्रियव्रत हुआ है, इसका विवाह हुआ, आगे इनको पुत्र हुआ नाभिक, उसका नाम अग्निधर्म का पुत्र हुआ। अग्निधर्म के पुत्र के अंदर ब्रह्मा जी ने अप्सरा भेजी और अप्सरा के साथ विवाह हो गया। अग्निधर्म को अप्सरा में आसक्ति हो गई, उनका पुत्र हुआ नाभि, और नाभि के घर में पुत्र महिला ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और यज्ञ के अंदर भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु की बहुत बड़ी प्रार्थना की कि आप कृपा करके यहाँ हमारे यज्ञ में पधारे हैं तो हमारे यजमान नाभि को आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा आप ब्राह्मणों की पूजा से मैं संतुष्ट हूँ और मैं नाभि के घर में स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट होगा। आज नाभि के घर में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ और ऋषभ देव भगवान के अवतार। ऋषभ का अर्थ है जो ज्ञान से ऋष, ज्ञान से जो प्रकाशित हो वो ऋषभ देव, और ऋषभ देव का अवतार हुआ। यहाँ महाराज नाभि ऋषभ देव को प्रणाम किया, ऋषभ देव ने राज किया और ऋषभ देव के राजा ने इंद्र ने बरसात करना बंद कर दिया, तो ऋषभ देव ने अपनी शक्ति से बरसात शुरू कर दी। उस वक्त इंद्र यज्ञ था, जो भगवान का अवतार था वो इंद्र की कोष पे था, इंद्र की कोष का नाम है, आदमी बदलते रहते हैं। और फिर यज्ञ ने अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ देव के साथ कराया। और यहाँ एक भगवान का अवतार दूसरे भगवान के अवतार से स्पर्धा नहीं कर रहा था, अपनी बेटी के विवाह के लिए परीक्षा दे रहा था। और ऋषभ देव महाराज ने शिक्षा बहुत सुंदर राज चलाया और महाराज ऋषभ देव के घर में 100 पुत्रों का जन्म हुआ। उनमें सबसे बड़े का नाम भरत महाराज था, जिसके नाम से अजनाब वर्ष का नाम भारत वर्ष हो गया। जो भारत वर्ष नाम पड़ा है ये ऋषभ देव के पुत्र के द्वार के नाम के ऊपर हुआ। और इस ऋषभ देव ने अपने बेटों को शिक्षा स्वयं की, ऋषियों के बीच में बिठा के बेटों को भारत महाराज को लक्षण करके कहा, बेटो इंद्रियों का सुख तो संसार के अंदर कुत्ते बिल्ले को भी मिलता है, गुबरेलों को भी मिलता है और विष्ठा खाने वाले सूकर को भी मिलता है, लेकिन मानव जन्म जो है वो दिव्य तपस्या करके ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए है। बेटा स्वयं कहते हैं उसको पिता होने का अधिकार नहीं जो बच्चों को मृत्यु से बचा नहीं सकता है, पत्नी ग्रहण करने का पत्नी पति को अधिकार नहीं है अगर सत मार्ग को चला नहीं सकता है, गुरु को शिष्य को ग्रहण करने का अधिकार नहीं है अगर उसका उद्धार नहीं कर सकता है, राजा को प्रजा पालन करने का अधिकार नहीं है अगर उनके लिए धर्म की व्यवस्था करके जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं करा सकता है। ऋषभ देव की अद्भुत शिक्षा अपने बच्चों को, अपनी प्रजा को, और फिर महाराज भरत को राज तिलक देके ऋषभ देव भी अवधूतों की जीवन बिताने लगे। भगवान होते सिद्धियां हाथ आके हाथ जोड़ के खड़ी होते कहते हैं ऋषभ देव जी हमको स्वीकार करो, ऋषभ देव कहते मैं नहीं स्वीकार करूँ, मन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये सिद्धियां ब्रज परिषद ने प्रथम पूछ दिया, ऋषभ देव भगवान का अवतार था उसका सिद्धियां क्या बिगाड़ सकती है। सुखदेव महाराज कहते हैं ऋषभ देव कहते हैं मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, मन कभी भी बड़े बड़े ऋषियों का मन किसी वक्त भी विचलित हो सकता है, और ये उदाहरण तो भगवान शंकर से लेकर सब ऋषियों तक मिलता है। इसलिए ऋषभ देव ने उदाहरण रूप से साधा और फिर तो अवधूत का भी छोड़ के पाइथन जैसा जीवन एक जगह पड़े थे, जो आए वो खाए और उधर ही पड़े रहे, और फिर वो एक बार वन में जंगल लगी पत्थर मुंह में रख के ऋषभ देव ने अपना शरीर त्याग दिया। और उस ऋषभ देव ने दक्षिण भारत में शरीर त्यागा, अरहन नाम का राजा उनके पीछे उनका शिष्य बना, और फिर ऋषभ देव के बाद जैन धर्म शुरू हुआ, जो फिर निर्वस्त्र रहना और ये सब ऋषभ देव के पीछे थोड़ा सा वैदिक धर्म से अलग हो गए स्थान के ऊपर। अब महाराज भरत का नाम आता है, उसके राज की महानता का वर्णन आता है, उसके राज के अंदर इतने यज्ञ इतना धर्म कर्म किया, 10 भाई बड़े राजा बने महाराज ऋषभ देव के भरत और 9 दूसरे 9 पुत्र तो बड़े साधु सन्यासी नव योगेंद्र बने, जो आगे चल के 9वें स्कंद में हम उनका दर्शन करेंगे। 12वें स्कंद में नव योगेंद्र जी, 11वें स्कंद में 5 अध्याय भागवत धर्म का उपदेश देंगे, और 81 ब्राह्मण बने, एक ही पिता के पुत्र, कुछ ब्राह्मण बने कुछ साधु बने कुछ राजा बने। और महाराज भरत की क्षमा के ऊपर राज को अपने बेटों को देकर, ये पृथ्वी का राज बेटों को देकर, और महाराज पुल है आश्रम गंडक की नदी नेपाल में है, जिसके पत्थर सालन नाम में पूजे जाते हैं। गंडकी के किनारे पुनः के आश्रम में महाराज भरत तपस्या के लिए चले गए, तो 2 टाइम नदी में स्नान करते, त्रिकाल संध्या करते, भगवान का ध्यान करते। एक दिन नदी के किनारे गर्भवती हिरण को देखा, जिसके पीछे शेर धार रहा था, हिरण नदी के ऊपर से कूदी, दूसरे तरफ गिरते ही हिरण के प्राण निकल गए और बच्चा भी जी गया। महाराज के भरत के हृदय में दया का उदय हुआ। दया सतोवृत्ति की वृत्ति है, सतोगुण की वृत्ति है। भागते हुए बच्चे को उठाया, उस बच्चे को जीवित रखने के लिए उसको पालन पोषण करने लगे, दूध पिलाए, उसको खिलाए, घास लाके। अब बच्चे की देखभाल करने लग गए तो भक्ति थोड़ी सी कम होने लग गई। दया तो अच्छी बनती है लेकिन सतोगुण सदा नहीं रहता है। सतोगुण बदल के एकदम रजोगुण में हो गया, उस बच्चे में आसक्ति हो गई। अब आसक्ति जो हो गई तो बच्चे के ध्यान में रहने लगे, बच्चा तो सदा साथ है, हिरण का बच्चा बड़ा हुआ तो हिरणों के साथ रहेगा, आदमी के साथ तो नहीं रहेगा। जैसे भी दो आदमी के मन हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते, चाहे कितने घनिष्ठ मित्र हो, भाई भाई हो, पति पत्नी हो, लेकिन सब बातें दिल खोल के कोई नहीं किसी को कह सकता है। दुनिया में वो ही नहीं सकता है, हमें क्या कोई किसी के साथ नहीं रह सकता है। यहाँ हिरण जो चला गया तो उसको उसके पीछे चला गया, उसको ढूंढते ढूंढते हिरण तो नहीं मिला लेकिन अंधेरे में नीचे गिरा और मरते समय हिरण का ध्यान करते हुए मरा। दूसरे जन्म में हिरण का शरीर मिला। इतने बड़े महाराज भक्त दूसरे जन्म में हिरण का शरीर मिला और हिरण के शरीर मिलते ही उनको भगवान का भजन नहीं मिला। वो उस जगह को छोड़ के खुले के आश्रम में आए और वहीं रहने लगे। समय आने के ऊपर हिरण का शरीर छोड़ दिया। तब वो ब्राह्मण के घर में जड़ भर के रूप में जन्म हुआ। अब जिनके बोले नहीं, कुछ करे नहीं, चुप, सब इंद्रियों को शांत में रखे। पिताजी की मृत्यु के बाद भाई ने तो उसको कहा तुम गाय चढ़ा दो तो ऊंचा काम करे। तो जड़ भर का तीसरा जन्म यहाँ सिद्धांत में स्थापित होता है। अंत गति तो मती, अंत में हिरण का ध्यान किया तो हिरण के शरीर में चले, तो इसका मतलब दूसरा जन्म होता है। और दूसरा सिद्धांत यह है कि की हुई भक्ति कभी नाश नहीं होती है। हिरण के शरीर में भी उनको अपनी भक्ति की हुई याद रहे तो भक्ति का कभी नाश नहीं होता। अब जड़ भक्त के रूप में एक दिन कुछ डाकू देवी की पूजा कर रहे थे, उनको बलि चढ़ाने की, उनको हाथ आ गया। ये जड़ भक्त कपड़ा मोटा ले गए उधर, बड़ा स्नान कराया, खिलाया, सुगंध तेल लगाया, चुप करके खाया। जब ले जाके देवी के सामने तलवार निकाली तो देवी ने कहा ये तो ज्ञान मित्र महान भक्त और मेरे सामने भगवान के भक्त का ये हत्या कैसे करे। देवी मूर्ति से निकल के तलवार लेके सब डाकुओं को मार दिया और जड़ भक्त को तोड़ दिया। तो देवता भक्तों की रक्षा करते हैं। जड़ भक्त वापस लौट के आए। एक समय की बात है, सिंध चोलेर का राजा महाराज रघुवर पालकी में गंगा सागर जा रहा है। अब यहाँ अन्य पुराणों में ये लिखा है कि वो जो हिरण था उसको कई जन्म देने थे, लेकिन जो उनका संग भरत महाराज का हो गया तो वो राजा रघुवर के रूप में साधु बन गया। और उसका सत्संग में इतनी रुचि थी महाराज जी के साधुओं का संग करते। और गंगा सागर तो ऐसा तीर्थ है, कहते सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार है। गंगा सागर एक बार जाए तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ कपिल देव का आज भी आश्रम है। गंगा के अवतरण की कथा में आएगा। हाँ, उसमें अपने 11 स्कंद और 9 स्कंद में इसका वर्णन आएगा। तो अब जड़ भर महाराज रघुवर की पालकी उठाने वाले चार आदमी में एक बीमार हो गया। आज की यही नजर आया वहां मोटा पालकी उठाने के लिए। ये जो पालकी उठाए नीचे देते मकोड़ी चूंकि तो पांव इधर रख दी तो पालकी हिले तो महाराज रघुवर को क्रोध आ जाए कि तुम्हें चलना नहीं आता है, तुम थक गए हो, पतले हो, खाते नहीं हो, आज तक नहीं बोला था जड़ भर, किसी से नहीं बोला था। पिता ने 3 महीने प्रयास किया, गायत्री मंत्र जपाने का नहीं जपा, जो कहीं उनका उल्टा था। सिर्फ इसलिए कि अब ये जन्म बेकार नहीं गवाना है। लेकिन महाराज रघुवर से बोलना शुरू किया पहली बार, क्योंकि वो उनके हृदय में वात्सल्य का प्रेम उस हिरण के लिए था, वही तो रघुवर बना था, तो उसके अंदर उनका प्रेम था। लेकिन बोले क्या, बोले कि आप किसको मोटा पतला कह रहे हो, कौन तक क्या है, शरीर को कह रहे हो या मुझे कह रहे हो। मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। महाराज रघुवर एकदम पूजे नीचे और अपने सारे प्रजा के साथ, बड़े बड़े मंत्री के साथ थे, एकदम चर भट के पांव में गिर पड़े।
बोले आप शरीर को आत्मा से अलग बताने वाले बड़े महात्मा हो, कौन हो?
तो प्रश्न पूछा कि आपको भार नहीं लगता है कि आपके ऊपर अगर कोई कटोरा रखेंगे उसमें पानी रखेंगे तो पहले कटोरा गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल गर्म होंगे, तो आपके कंधे के ऊपर भार है तो आपको लगना चाहिए ना।
वही के घर की ऊपर ये मेरा पांव, ये भी मिट्टी का बना हुआ, मैं मिट्टी का, ये तुम्हारी पांव की मिट्टी की, तुम मिट्टी के, अपने आप को राजा समझते हो और हम कहीं हमको समझते हम जाने वाले, कभी तुम राजा होते हो कम हम, कभी हम राजा होते हो, तो मिट्टी का ये सारा खेल है और मूर्खता से तुम अपने आप को राजा मान के बैठे हुए हो।
जर भट की ये जो बातें सुनी महाराज रघुगण कहते हैं मैं तो अब क्या कर लूंगा, कागज जाके खानपुर का सत्संग करना था, आप ही तो गुरु मिल गए, मुझे उपदेश दीजिए। तो बोला कहाँ के राजा हो? बोला मैं सिंध सुमेर का। बोला कौन से देश में आते हैं? तो बोला भारतवर्ष में। बोला वो किसके नाम से राज? बोला महाराज भक्त। तो वो भारत महाराज भक्त में ये मैं तीसरा मेरा जन्म है। और तब महाराज भक्त ने उनको एक उपदेश दिया है, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं भवाजी उपदेश, कि संसार के अंदर लोग वन में जाते हैं चंदन को लेने के लिए, कि सस्ता माल लाएंगे शहर में बेचेंगे, लेकिन वन में ऐसे भूल जाते हैं कि वापस निकल नहीं पाते हैं। और उसका अर्थ ये भी है, संसार रूपी ऐसा वन है, हम आते हैं यहाँ अटल में भगवान का भजन करके भगवत धाम जाने, लेकिन यहाँ आके ऐसा फंस जाते हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता ही दिखाई नहीं देता है। और फिर जड़भट को अंत में कहते हैं महाराज रघुकर को जड़भट, जड़भट कहते हैं अगर संसार से निकलना है तो एक ही रास्ता है, साधुओं के चरणों की रज का अभिषेक करो, महत पद रज अभिषेक। हम इसका अर्थ ये है कि साधु संत महात्मा जिस रास्ते से जाए जैसे शिष्या से उनके पीछे चलो, फॉलो इन फुट स्टेप्स ऑफ महाजन। महाजन भिजे न गलत न पंथ। तो ये उपदेश जड़ भक्त का बहुत अति उत्तम है और इस जड़ भक्त के उपदेश के साथ यहाँ 15 अध्याय पूरे होते हैं। ये जो 26 अध्यायों का पांचवा स्कंध है, इसके अगर इसके बाद भूगोल और खगोल का वर्णन है कि कितने वर्ष है, कितने लोग हैं, इसका वर्णन है, वर्ष और अंत में नर्क का कैसे होता है इसका वर्णन है। और इस पांचवें स्कंध को स्थिति स्कंध कहते हैं, ये भगवान का विराट स्वरूप जैसे हो ऐसे ही पूरा स्कंध है। तो इसके बाद वर्णन आता है दीप, सात दीप पृथ्वी के बोलते सात द्वीप हैं, उन सात द्वीपियों में जम्बू द्वीप सबसे महत्वपूर्ण है। जम्बू द्वीप का मतलब जहां भाग्यशाली मानव का जन्म भगवत प्राप्ति के लिए होता है उसको जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, 9 वर्ष में एक वर्ष दूसरे से बड़ा है और बीच में एक सोने का पर्वत है जम्बू द्वीप में। तो बीच वाला जो वर्ष है उसका नाम है इलावर्त वर्ष, वहां भगवान शंकर और पार्वती रहते हैं। बाकी जो वर्ष है वो सूक्ष्म में दिखते नहीं है। एक वर्ष का नाम है किमपुर्त वर्ष, वहाँ हनुमान जी भगवान राम की पूजा करते हैं। एक हरि वर्ष है जहाँ नरसिंह देव की पूजा प्रहलाद महाराज करते हैं। एक भद्र वर्ष है वहाँ धर्मराज का पुत्र भद्रसेन हरिदेवा की पूजा करते हैं, जो वेदों की रक्षा करते हैं। और फिर इन सब ने विशेष रूप से कहते हैं एक ही वर्ष है जो दिखता है वो है भारत वर्ष। ये भारत वर्ष सब वर्ष बाकी वर्षों के अंदर स्वर्ग से जो लोग आते हैं वो उन लोग उन वर्षों में 10,000 साल तक सुख से भोग करते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते हैं, बीमार नहीं होते हैं। और वहां अंतिम आखिरी साल में एक बच्चा होता है वो वर्ष तो भोग है। सिर्फ एक भारत वर्ष कर्म भूमि है, इसलिए देवता के भारत वर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु ने कहा आगे चाहिए जिसका भारत वर्ष में जन्म पाए, जन्म सार्थक कर लो, और सब परोपकार करो, अपना भला करो, दूसरों का उद्धार करो। तो यहाँ भारतवर्ष का वर्णन आता है तो कहते हैं भारतवर्ष में भगवान नर नारायण आराध्य है, नारद की उनकी पूजा करते हैं और इस वर्ष में जन्म लेने वाला बड़ा भाग्यशाली है। वर्ण आश्रम व्यवस्था केवल भारतवर्ष में पहले से भी आ रही थी जो अब बिगड़ गई है, इसको अगर ठीक करें फिर स्थापित किया जाए तो बहुत सुंदर समय 10,000 साल तक कलयुग में स्वर्ण युग का उल्लेख लिखा है सब जगहों में। वैसे तो भारतवर्ष के वर्ण के बाद देवों के अंदर का वर्णन है, 6 ऊपर के लोग पूर्व स्वर्ग जन लोग तप लोग महालोक, ये 3 लोग सिर्फ परम लोक तक ब्रह्मा जी की रात जब होती है तो प्रलय होती है। तप लोग जन लोग में ऋषि लोग रहते हैं, वो उधर ही रहते हैं और हमारे इसके 7 लोक हैं, पाताल सलातन भूतल, ये नीचे बलि महाराज रहते हैं भूतल लोग, और नीचे एक कोने के अंदर अनंत शेष रहते हैं जो सार सबको धारण करते हैं, और यमराज जी पूरी सब परिषद महाराज ने पूछा कि ये नर्क क्या है, वह जो जिसके कर्म बुरे हैं उनको दंड भोगने के लिए जिसे नगर के अंदर जिस शहर के अंदर जेल बनाते हैं, जेल गाय के लिए बनाते हैं, जो अपराध करता है उसको जेल में डालते हैं, ऐसे ही भगवान की सृष्टि में जो गलत काम करता है उसको नर्क में डालते हैं। बोले नर्क गाय के लिए डालते हैं, बोले सुधारने के लिए डालते हैं, दंड नहीं। जैसे बर्तन कोई मैला हो जाए उसको गर्म पानी में क्यों डालते हैं, धो के साफ करने के लिए ना। तो असल में नरक में भी अगर थोड़ा सा कठिनाई है तो वो सुधारने के लिए है, मारने के लिए नहीं। तो बहुत से नरकों का वर्णन जब सुना, एक नरक का मैं सिर्फ याद करता हूँ, एक नरक के विषय में लिखा है, घर में मेहमान आ जाए अतिथि और कोई उसको टेढ़ी आंख से देखे कहां मुसीबत आ गई, तो उसको एक नर्क में डाला जाता है जिसमें उसकी आंखें वो चील निकालती है। इस एक में ध्यान किया कि इस एक नर्क का वर्णन भागवत का, हमारी संस्कृति में हरेक आदमी ने घर बनाया तो बाहर मेहमान का कमरा बनाया, एक शिक्षा में कितनी बड़ी संस्कृति में परिवर्तन आया कि गांव के बाहर अतिथि के रहने की जगह घर में एक गेस्ट रूम सब बनाते हैं, कि गेस्ट रूम का कंसेप्ट आया कहां से, एक शिक्षा ने इतना बड़ा प्रभाव डाला कि गेस्ट हाउस अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव है। भारतीय संस्कृति में असल में होटल में कई बार खाने का कई प्रसंग था ही नहीं, हमेशा अतिथियों को बड़ी आदर के साथ खिलाया जाता है। ये तो पाश्चात्य संस्कृति में भोजन को बेचने का, ये तो बाहर का बात में आया है। हमारी संस्कृति में महाराज युधिष्ठिर के राज में 500 रुपये ये भोजन बनाते थे, आने वाले सब लोगों को भोजन मिलता था, ये तो अतिथियों का सेवा होती थी। ये शास्त्र हमारा तभी हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये सेवा के काम प्रसाद वितरण होना चाहिए, अन्न का दान उत्तम है, विद्या दान अन्न दान रहने के लिए जहाँ जाओ घर कहीं भी कुछ भंडारे चलते रहते हैं, 1,000 लोग आए तो भले खाए कोई कमी नहीं होती है, भगवान की तरफ से सबकी व्यवस्था का। प्रभुपाद जी ने एक बार चिट्ठी में लिखा कि हमारे मंदिर के अंदर आने वालों सबके लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए और रसोई घर की मालिक राधा रानी 1,000 लक्ष्मियां सेवा करती है, किसी चीज की कमी कभी नहीं होगी, जो खिलाता है उसके पास कभी 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 कमी हो नहीं सकती, जो देता है उसको ऊपर वाला उससे 1,000 गुना ज्यादा दे देता है। तो इसलिए ये काम बहुत बड़ा अच्छा हमारी संस्कृति में सेवा का निकला। यहाँ 5वां अध्याय समाप्त होता है और 6वां अध्याय स्कंद का, 5वें स्कंद की समाप्ति के ऊपर 6वें स्कंद में पहला प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज कि लोग सब अगर तो आप करेंगे नरक में जाएंगे तो उनका उद्धार कैसा होगा, ये बचेंगे कैसे। सुखदेव महाराज कहते हैं पाप करे तो उसका प्रायश्चित करें, बीमार हो जाए तो इलाज कराए, बोला बीमार हो इलाज कराए फिर वापस जाके वही काम करे तो ये तो हाथी का स्नान हो गया, नदी में स्नान करो फिर मिट्टी ऊपर डाल दो, एक दिन पाप करो दूसरे दिन प्रायश्चित करो फिर पाप करो,
तो सुखदेव महाराज कहते फिर ज्ञान हो जाए तो आदमी का ज्ञान ना मिल जाएगा, पाप करेगा नहीं, बोला सबको ज्ञान तो नहीं हो सकता, सब तो गुरु के पास नहीं जाएंगे, सब तो उदार कैसे हो। तब परीक्षक महाराज को देखा कि ये भक्त है, इसको उत्तर ऐसा देना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो। तब तीन अध्यायों में छठे अध्याय को छठे स्कंद को पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब भगवान ने अगर संसार बनाया है तो संसार के सबका पोषण करते हैं, जैसे माँ बच्चे का पोषण करते हैं। तो तीन अध्यायों में भगवान के नाम के उच्चारण से कैसे भगवान पोषण करता है, जाने में अनजाने में खांसी करते हुए ही अगर राम नाम निकल जाए, गोविंद कृष्ण निकल जाए तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो तीन अध्यायों में अजामिल का प्रसंग आता है। मेरे ख्याल में आज अजामिल तक जाना था लेकिन 9:15 हो रहे हैं, वाणी को यहाँ विराम देते हैं, कल 6वें-7वें स्कंद को पूरा करेंगे। अजामिल इंद्र का कैसे उद्धार हुआ, वृत्रासुर और आपने 7वें अध्याय में प्रहलाद की कथा, उसका वर्णन कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।